ओम शांति। आज भट्टी के दूसरे दिन प्रातःकालीन सेशन में हम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता दीदी का स्वागत करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। आपको तो कौन नहीं जानता। मधुबन में आना हो और आपसे मुलाकात न हो, ये संभव ही नहीं है। चाहे किसी भी कार्यक्रम में हम आते हैं, आपकी रूहानी दृष्टि बाबा के महावाक्यों से प्रभावित, रूहानी बोल सबको आकर्षित करते हैं और मन को और गहराई में ले जाते हैं। कुमारियों से लेकर के जो छोटी छोटी कुमारियां, चाहे वो बाबा के कार्यक्रम में आते हैं, चाहे वो अन्य कोई कार्यक्रम में आते हैं, उनके क्लासेस से लेकर के बड़े बड़े भाई बहने, चाहे मैनेजमेंट के लोग, चाहे कोई भी क्लास के लोग यहाँ पर आते हैं, तो गीता दीदी के प्रवचनों का जरूर लाभ मिलता है। अब बहुत सिंपल है, कभी कोई आवाज व्यर्थ या बहुत मतलब एक शो उस रूप का कभी नहीं देखा। मैं बहुत सालों से आपको जानती हूं और आपको देखती हूं, मिलती हूं, कई बार लेन देन भी होता है कई ज्ञान की बातों का या अन्य कार्यों का, लेकिन बहुत सिंपल है। और जितने आप सिंपल हैं उतनी ही ज्ञान की और धारणाओं की गहराई है आपके अंदर। कर्मठ हैं, अथक हैं, एकदम शांत स्वभाव हैं, नम्र चित्त हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि गीता में जैसे कहा है ना, भगवद गीता में, कि कर्म करते रहो लेकिन फल उसकी प्राप्ति के बारे में नहीं सोचो, माना इच्छा ना करो। आपकी जीवन ही ऐसी है, आपने अपने नाम को सार्थक किया है। बहुत बचपन से, 14 साल की आयु से जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब से लेके आपको बाबा का परिचय मिला, और प्यारे बाप दादा का परिचय मिलने से ही ज्ञान की स्टडीज के प्रति आपकी लगन बढ़ने लगी। आप लौकिक स्टडीज में भी बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं, आपने गुजरात यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, लेकिन वो जो पढ़ाई की आध्यात्मिकता की जो लगन थी, उस लगन ने आपको जल्द ही मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद, उसमें टॉप होने के बाद आपको बाबा की सेवा में बाबा ने बुला लिया। आपने भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत आदि अनेक सेवा केंद्रों पर सेवा की, और सब जोन भावनगर के आप सब जोन इंचार्ज बन के भी सेवा करते रहे। फिर जब ज्ञान सरोवर यहाँ बना, अकादमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, तो बाबा का बुलावा हेडक्वार्टर्स में आया, आप हेडक्वार्टर्स में आ गए और कई वर्षों तक आपने पूरा ही वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल कारोबार, अकोमोडेशन, रिसेप्शन वहां आप कार्यरत रहे। उसके साथ साथ जो आपका एक सीनियर राजयोगा शिक्षिका के रूप में कार्य चलता है वो आप करते रहे, और फिर बाबा ने आपको बुलावा दिया, आप फिर हाजिर हो गए और अब वर्तमान समय आप शांतिवन में रहते हैं। कुमारियों की जो ट्रेनिंग होती है उसके सारे कारोबार आप ही देख रेख करते हैं। उसके अलावा जितने भी तीनों कैंपसेस में हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, चाहे वो गहरी योग भट्टियां हों, चाहे वो साइलेंस की मौन भट्टियां पांडव भवन में हों, चाहे ज्ञान सरोवर में विंग्स के कार्यक्रम हों, सब कार्यक्रमों में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। और आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो हर प्रकार से आप हर क्षेत्र में आगे हैं। और अपनी इंटरनल जो आपकी स्टेज है, उस स्टेज वो आपकी हम देखते हैं दिनों दिन और पावरफुल बनती जा रही है। वी कैन कैच दोज वाइब्रेशंस। और आज आपको वो जो तपस्या, कैसे शक्तिशाली तपस्या हमें करनी है, उसका आधार क्या है, इस विषय में हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता दीदी।
ओम शांति। इस वर्ष की पांडव भवन की भट्टी का ये लास्ट ग्रुप है। इसमें कोलाबा के भाई बहने बैठे हैं, हाथ ऊपर करें। और चंडीगढ़, दोनों का स्वागत है। मधुबन की पावन भूमि में तपस्या के लिए आप आए हैं और जीवन में तपस्या का बहुत ही महत्व है। भक्ति में भी आप देखिए, हर धर्म में कुछ ऐसे दिन आते हैं लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं। हिंदू भाई बहने श्रावण मास में, अधिक मास में बहुत ही भक्ति धर्म ध्यान दान पुण्य करते हैं। जैन भाई बहने भी पर्युषण करते हैं, मुस्लिम भाई बहने भी रमजान मास में रोजा रखते हैं, क्रिश्चियन भाई बहने भी ईस्टर के दिनों में तपस्या करते हैं। माना मनुष्य आत्माओं ने इस महत्व को समझा है कि भल हम इस संसार के खेल में आए हैं, पर हमें अपनी आत्म उन्नति भी करनी है। उनको सही ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति के व्रत उपवास तप करते हैं। भल हर कोई रोज भक्ति करते हैं, घर में भी दीवार आरती गाते हैं, मंदिर में जाते हैं, ऐसे विशेष तिथि वार आते हैं जब तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी सारे साल में काफी दिनों तक तपस्या के लक्ष्य से पुरुषार्थ करते हैं। और तपस्या में दो बात वो भी समझते हैं कि एक तो इंद्रियों पर कंट्रोल हो, कर्मेंद्रियों पर संयम हो, भल प्रतिदिन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, इंद्रिय रसों का स्वाद लेते हैं, फिर भी समझते हैं कि कर्मेंद्रियों पर संयम होना चाहिए, इंद्रिय रस कंट्रोल में होने चाहिए, आत्मशुद्धि को महत्व देते हैं। और दूसरा, हर आत्मा की एक सूक्ष्म में लगन रहती है कि उस परमात्मा से हमारा मिलन हो। परमात्मा प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं तो हम बच्चों को तो स्वयं भगवान मिला है और वो हमें सत्य ज्ञान दे रहा है, सही तपस्या की विधि सिखा रहा है। तो हम सब बाबा के बच्चे, बल हम सब ने जीवन पवित्र और योगी बनाया है, हम रोज बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं, अपना समय तन मन धन बाबा की सेवा में लगाते हैं। ये रूटीन हमारा बन गया है, लेकिन फिर भी हम सब समझते हैं कि हमें विशेष समय निकाल कर सभी बातों से फारिग होकर एक निष्ठ बनकर हमें भी तपस्या करनी है। बल बाबा ने ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र योगी जीवन बनाने के लिए कहा है, लेकिन हरेक का ये उमंग उत्साह और लक्ष्य रहता है कि हम हैं योगी तपस्वी आत्माएं, निमित्त ग्रस्त में रहना है, दुनिया में रहना है, पर अब जबकि भगवान मिले हैं, वो तो बिचारे तप कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, हमें तो भगवान मिल चुके हैं, पर हमारा लक्ष्य है बाबा से पूरी प्राप्ति करनी है। आज भी बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों से हाईएस्ट पुरुषार्थ कराते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जितनी शिव बाबा से प्राप्ति की तो बाबा हम बच्चों से भी उसी लगन से पुरुषार्थ कराना चाहते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, ये भक्ति में धारणा होती है कि यथाशक्ति यथा भावना हम धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन संगम युग में पूरी शक्ति, पूरे निश्चय और पूरे लगन से हमें पुरुषार्थ करना है। और सत्य जब मिला है तो पता चला ये तो बहुत सहज तपस्या है, इसमें कोई कठिन बातें नहीं है, कोई हठ दमन की बातें नहीं है। भगवान ने बहुत मूल सत्य बातें हमें बता दी, जिसके कारण सारा पुरुषार्थी सहज हो गया। वो एक एक कर्मेंद्रिय को कष्ट देते हैं, एक एक कर्मेंद्रिय का दमन करते हैं कि मन इंद्रिय रसों में भटक न जाए, उपवास करते हैं कि मन स्वाद में फंसे रहे, आंख बंद करके बैठते हैं कि कुछ भी देख कर हम चलित न हो जाएं। शरीर से आसन लगाकर स्थिर बैठने का प्रयास करते हैं कि हमारे में चंचलता ना हो, एकाग्रता हो। तो वो देह को कष्ट देकर मन एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। बाबा ने हमें सहज विधि बता दी कि एक एक कर्मेंद्रिय को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सभी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो मन, बुद्धि और संस्कार है। कोई राज्य व्यवस्था बिगड़ जाए, अव्यवस्थित हो जाए, तो एक एक कर्मचारी को कष्ट देने की जरूरत नहीं, उनके मुख्यमंत्रियों को ठीक कर दो तो अपने आप उनके कर्मचारी भी ठीक हो जाएंगे। तो बाबा ने ये सत्य हम बच्चों को बताया कि इन सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाली जो शक्तियां हैं वो मन, बुद्धि और संस्कार है, और उनका राजा जो है वो आत्मा स्वयं है, है ना। जब राजा गफलत में है तो मंत्री भी करप्ट हो जाते हैं, वो भी ढंग से काम नहीं करते हैं, तो कर्मेंद्रियां भी, फिर कर्मचारी भी ठीक काम नहीं करते। तो हम ही विस्मृत स्थिति में थे, हमें स्मृति ही नहीं थी कि हम आत्मा हैं, भगवान के बच्चे हैं, हम ओरिजिनली शुद्ध हैं, पवित्र हैं। हमें ये सत्य पता ही नहीं था, याद ही नहीं था। तो हम तो अज्ञानता में थे, हम खुद ही इंद्रिय रसों में थे, देहबान में थे, विषय वासना में फंसे हुए थे, तो जीवन आउट ऑफ कंट्रोल था, और उसी का रिजल्ट कलयुग में आज देखते हैं कि सभी व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। तो बाबा आकर हम आत्माओं को अटेंटिव बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, हमें सुजाग करते हैं कि याद करो तुम कौन है ना। रोज मुरली में कितना बाबा हमें स्वमान की याद दिलाते हैं कि वास्तव में तुम क्या हो। आज भी बाबा ने कहा कि तुम अपनी बैटरी चार्ज करो, तुम दूसरों का चिंतन मत करो। कि रामचंद्र की आत्मा ज्ञान लेती है या नहीं लेती, अरे भाई बाबा कहते हैं तुम वो चीजें तुमको नहीं समझ में आती है तुम छोड़ दो, पर मुख्य बात जो करनी है कि वो तुम अपना चिंतन करो, अपनी उन्नति के लिए तुम अपनी बैटरी चार्ज करो। तुम पर चिंतन में, अनावश्यक बातें सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करो। और अक्सर हम देखते हैं कि सचमुच अनावश्यक बातों में कैसे टाइम जाता है। बाबा के घर में काफी मेहमान आते हैं, ज्ञान लेते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, पूछेंगे पशुओं की आत्मा कहाँ जाएगी। अरे भाई हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। जानवर की आत्मा कहाँ जाएगी, उसकी चिंता है। तो बाबा ये रियलाइज कराते हैं कि कैसे तुम पर चिंतन में जाते हैं। भाई तुम्हारी गति होंगी तो ये तो तुमको फॉलो करने वाले हैं, ये पशु पंछी प्रकृति तो तुमको फॉलो करते हैं, तुम्हारा उद्धार होगा तो उनका भी अपने आप हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने, अपने आप सबका भला होगा। तुम अपनी चढ़ती कला करने का ध्यान रखो, अपनी उन्नति का खुद प्रबंध करो। तो इसलिए बाबा हम आत्मा रूपी राजा को नॉलेजफुल बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। हाँ, जैसे घर में आप अलर्ट बैठे हैं, हाँ, पावर में बैठे हैं, तो कोई ऐसा वैसा घर में थोड़ी घुस जाएगा। कोई आपके घर में आके कचरा फेंक के जाएगा क्या? नहीं, अरे हम बैठे हैं, ऐसी किसकी शक्ति है जो आके कचरा डाल के जाए। हम यहाँ बैठे हैं ना, जीते जागते हम ऐसे कहते हैं ना। तो ऐसे ही हम आत्माएं जितनी ज्ञान स्वरूप बनती है और जितनी हम बाबा से जुड़ते हैं, हम पावरफुल बनते हैं, हम अलर्ट होते हैं। तो कोई अनावश्यक बातें हमारी बुद्धि में डाल नहीं सकते, कोई हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ज्ञान नहीं था, हम ही कहते थे क्या करें, हम तो अपने घर में ही बैठे होते हैं, मेहमान दूसरे आके हमें सारी बातें इधर उधर की बता के जाते हैं। तो पहले हम ऐसे कहते थे कि हम तो अपने घर में ही बैठे होते हैं, पर क्या करें, लोग आते हैं और हमें दुनिया भर की बातें सुना के जाते हैं। अब हम कहते हैं कि हम क्यों ऐसी बातें सुने, हम क्यों व्यर्थ बातें करने में टाइम वेस्ट करें। अब हम क्या करते हैं, कोई आते भी हैं, हम ज्ञान की बातें करने लगते हैं, तो अपने आप उनका व्यर्थ बोलना बंद हो जाता है। भाई इंटरेस्ट होगा तो ज्ञान सुनेगा, नहीं होगा तो बहाना निकाल के उठ के जाएगा, मेरे को काम है मैं जाता हूँ। क्योंकि ज्ञान सुनना नहीं है तो बहाना निकाल के चले जाएंगे। तो इसलिए जो बाबा कहते हैं दैनिक जीवन की बातें, दृढ़ता से इनको सदा फॉलो करते रहना, ये भी एक तपस्या है, ये भी तपस्या है। रोज अमृत वेले उठना, रोज बाबा को याद करना, रोज क्लास में जाना, रोज बाबा की मुरली के महावाक्य सुनना, जीवन में इस नियम को बना के रखना, ये दृढ़ता एक प्रकार की तपस्या है। कहते हैं ना कई लोग, भाई हम तो रोज नहीं कर सकते, है ना, कई अपनी बताते हैं ना कमजोरी की, भी आप रोज कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, माना इतना भी विल पावर उसमें नहीं है। भल हम बाबा के बच्चे देखने में साधारण हैं, लेकिन हम आत्माएं शक्तिशाली है। आज कोई 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से नियमित रूप से ये अभ्यास करते हैं, तो इससे ही हमारा एक रूहानी स्वरूप बनता जाता है। तो ये भी एक हमारी तपस्या है, क्योंकि हमारा दृढ़ संकल्प है, बाबा से हमारा प्रॉमिस है कि जहां तक जिएंगे क्या करेंगे, ज्ञानामृत पिएंगे। हम व्यर्थ बातें नहीं बुद्धि में डालेंगे, हम रोज सत्य महावाक्य सुनेंगे। तो ये मन में सत्य ज्ञान की बातें डालना बहुत जरूरी है। जैसे दीवा अखंड जलाना है तो क्या करते हैं, ग्रीत डालते रहते हैं ना, ध्यान रखते हैं ना भाई ग्रीत खत्म ना हो जाए, डालते रहते हैं। और उस पर वो कांच का गोला लगा के कि भी हवा के झोंके से ये बुझ ना जाए, तो उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। तो वही चीज हम खुद का दीवा जलाने में कर रहे हैं कि मेरी स्मृति की ज्योत सदा जगी रहे, हमें कभी भी ये विस्मृति ना हो, हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं। दुनिया को इन प्रश्नों का जवाब नहीं है, पर हमारे पास तो है ना। हमें तो बाबा ने प्राथमिक ज्ञान में ही ये बातें बता दी। तो ये रोज हम पक्का करते हैं। दादी जानकी पक्का कराती है ना, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। ये ज्ञान का सार है। हमारी तपस्या कोई डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ कोई बहुत ऊंचे श्लोक चौपाई की बातें नहीं है। बाबा ने सिंपल शब्दों में पर मूल सत्य ज्ञान दिया, और उस ज्ञान की शक्ति कितनी है कि आज हम साधारण आत्माएं भी पवित्र योगी बनी हुई है। तो इसलिए हमें हमारी स्मृति सदा बनी रहे। जब हम भूल जाते हैं, बाबा कहते हैं ना, जब तुम अपने आप को भूलते हो तो बाप भूलता है। और जिस क्षण हम बाबा से डिस्कनेक्ट होते हैं उसी क्षण भूले होते हैं। बाबा की याद में रहकर कोई गुस्सा कर सकता है? कोई कहेगा मैं तो बिल्कुल बाबा की याद में रहकर ही गुस्सा करती हूँ, हो सकता है? हाँ नहीं, जो बाबा की याद में रहेगा उनकी स्मृति श्रेष्ठ होंगी, उनके गुण जागृत होंगे, वो आत्मा अपनी ऊंची पोजीशन में होगी, वो गलत काम कर ही नहीं सकती है। पर जब हम भूल जाते हैं, कर्म में खो जाते हैं, कोई परिस्थिति के चिंतन में चले जाते हैं, उस विस्मृति में ही भूल हो जाती है। इसलिए बाबा बार 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 ये पुरुषार्थ कराते हैं। आज क्यों हम विशेष समय निकाल करके सभी बातों से फारिग होकर क्यों हम तपस्या में बैठे, क्यों हम आते हैं पुरुषार्थ करने मधुबन में? क्योंकि विशेष अभ्यास कर लेने से हम लंबे समय तक नेचुरल स्मृति में रह सकते। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई मैं गाड़ी चलाना सीखा हूं पर आजकल अभ्यास नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस करना जरूरी, रोज अभ्यास करना बहुत जरूरी। इसलिए रोज हम बुद्धि में बाबा के महावाक्य भरते हैं। और रोज आप चाहे साकार मुरली बाबा की सुनते हैं, प्रैक्टिकल जीवन की कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा हमें बताते हैं, अव्यक्तवाणी सुनते हैं, बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थिति की, योग अवस्था की, पूर्ण पवित्र स्थिति की कितनी ऊंची सूक्ष्म गहरी बातें बाबा करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सत्य ज्ञान पाने के बाद एक साधारण मानव से संपूर्ण मानव बनने की जो यात्रा की, वही तो मुरली में बाबा हमें बताता है। ब्रह्मा बाबा का चिंतन है ना ये, क्योंकि खुद बाबा बना है, हमारे जैसा ही तो था बाबा। ब्रह्मा बाबा नंबर वन बने तो ब्रह्मा बाबा कौन थे? गृहस्थी तो थे, परिवार वाले थे, बच्चे वाले थे। और आज हमारे गृहस्थी भाई बहने क्या सोचते हैं? हम थोड़ी समर्पित है, हम तो घर में रहते हैं ना, माना हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं हो सकता। उसका कारण क्या बताते हैं? यही कारण बताते हैं। और वही ब्रह्मा बाबा आपकी ही जैसी स्थिति में होते हुए भी बाबा ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। बाबा तो संपूर्ण बन गए, नंबर वन में वही आत्मा संपूर्ण बने। तो महत्व क्या है, इम्पोर्टेंट किस बात का है? लगन लग जाए। आप घर में रहते हैं कि सेंटर में रहते हैं कि मधुबन रहते हैं, वो बात नहीं, महत्वपूर्ण बात कौन सी है? खुद की लगन हो, हमें ये लगन लग जाए कि बस मुझे बाबा की याद में मगन होना है। हम कहीं भी रहे, कोई भी परिस्थिति में रहे, किसी के भी साथ रहे, कारण सोचेंगे तो कारण तो होते ही रहेंगे, पर जो लक्ष्य का सोचते हैं, पुरुषार्थ का सोचते हैं, तो वो बन जाते हैं। कारण नहीं सोचना है, कारण तो रोज अंत तक आएंगे, पर मुझे क्या बनना है, बाबा क्या कहता है और मुझे क्या करना है, अगर इस लगन में हम रहते हैं तो हम जहां रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसमें रहते हुए भी हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, बन सकते हैं। इसलिए लगन लगना, पॉजिटिवली हम कहेंगे लगन लग जाएं, और कहेंगे कि हमें और सभी बातों से अब मन हट जाना चाहिए, वैराग्य आ जाना चाहिए। जो बातें जीवन में साधारण है, व्यर्थ है, नकारात्मक है, अब हमारा वहां से मन हटना चाहिए। कई चीजें हम समझते हैं कि ये बिल्कुल साधारण बातें हैं, ये कोई ऊंची बातें नहीं। देखो, रोज उठना, रोज नहाना, रोज खाना, रोज घर साफ करना, चलाना, नौकरी करना, इट इज कॉमन, ये तो सामान्य बातें हैं, रोज की बातें हैं। अब इसके लिए क्या ज्यादा सोचना है, वो तो हमें करना ही है। बाबा ने भी कहा है, तुमको अपना नौकरी धंधा करना है, घर संभालना है, और तुमको कमल फूल भी रहना है और अपना पुरुषार्थ भी करना है। तो वही बातें रोज की हम क्यों ज्यादा सोचे। रोज के काम है पर सोच सोच के हम भारी हो जाते। अरे कपड़े धोने, अरे अभी तो बर्तन करने, अरे अभी तो सब्जी बनाने। रोज करना है ना, इसमें क्या ज्यादा सोचना है। रोज उसकी बात, ये तो रूटीन है, ये कोई बहुत ज्यादा जवाबदारी की बातें नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी जवाबदारियां लेकर आज हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, आज उनके ऊपर कितनी जवाबदारियां हैं, पर जो करना चाहे वो विशेष कार्य करते भी है ना। आज हमारी दादियां कितनी बड़ी जवाबदारियां संभाल रहे हैं, पर है ना अपनी स्थिति में। तो हम सभी बाबा के बच्चों को भी अपना एक लक्ष्य बना लेना है कि हमें बनना है, बस हमें निरंतर स्मृति में रहना है। कल अव्यक्तवाणी सुनी, बाबा ने बताया अब सितारों का अनुभव करा, चारों ओर जगमगाती ज्योति का अनुभव। हमारी पहली तपस्या ये है कि ये स्थूल शरीर छिप जाए और ज्योति बिंदु आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए। जो मैं हूं वो सबको दिखाई दे। जैसे कई बार हम आपस में मिलते हैं, अगर हमारे तरफ किसी का ध्यान ना हो तो हम कहते हैं अरे भाई याद है ना, मैं भी हूं आप सबके साथ। तो अपनी उपस्थिति का हम एहसास कराते हैं ना, तो हमारी वास्तविक उपस्थिति कौन सी है? हम आत्मा है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो ज्योति स्वरूप है ना, और हम अभी तक उसका एहसास ही नहीं करा पा रहे हैं। और बातों में देखो तुरंत हो, अरे भाई मैं भी तो हूं यहां, है ना, अपने उपस्थिति का कितना रहता है। तो हमें अंदर में होना चाहिए कि जो दिख रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं ना, सबका ध्यान जिस पर जा रहा है वो मैं तो हूं नहीं, और मैं जो हूं उस पर कोई देख नहीं रहा है। तो हमें इसका खुद को ही एहसास हो कि मुझे इसको गुप्त करना है और मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अब वो हम कैसे कर सकते, तो वो बड़ा सहज तरीका है कि जितनी निरंतर मुझे अपने ज्योति बिंदु स्वरूप की स्मृति रहेगी तो मेरे द्वारा वही अनुभव दूसरे को होगा। देखो आप है यही, पर जिस दिन आपके मन के अंदर चिंता होगी, आप लोग कहेंगे क्यों भाई क्या बात है, आज बड़े चिंता में लग रहे हो, फिकर में देख रहे हो। कभी कहेंगे क्या बात है आज तो बड़े खुश नजर आ रहे है। तो आप वही ना, शारीरिक स्वरूप तो वही है ना, पर वास्तव में दिखता अनुभव क्या होता है, आपकी अंदर की स्थिति दिखती है, आपकी अंदर की स्थिति का अनुभव होता है ना। तो इस प्रकार हमें ये हो कि भल बाह्य रूप से देखने में शरीर आ रहा है, लेकिन मैं जो अंदर शुद्ध सत्य पवित्र आत्मा बैठी हूं तो वो मेरा अनुभव सबको होना चाहिए। वो मुझे इतना पावरफुली स्मृति में हो कि दूसरों को वो ही दिखाई दे कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई तेजस्वी आत्मा है यह अनुभव। तो उसके लिए अभ्यास करना है कि मुझे इस सत्यता का खुद भी घड़ी घड़ी एहसास करना है और मुझे दूसरों को भी ये महसूस कराना है। क्योंकि आज सारा ड्रामा अगर उल्टा हो गया तो उसका पहला कारण कौन सा है? यही है, यही है ना, कि हम अपने स्वरूप को भूल गए और देह भान में आ गए और इतने देह भान में आ गए कि वही चीजें अब दिख रही हैं, सुनने में आ रही है, वर्णन हो रही है और उसी का विस्तार संसार में हो रहा है। तो हम आत्माएं जो इस ड्रामा की मुख्य आत्माएं हैं, भगवान की साथी आत्माएं हैं, सत धर्म की स्थापना के निमित्त बनी हुई हम आत्माएं हैं, तो हम सबका पहला फर्ज यही है। भगवान ने जो प्रथम सत्य हम सबको बताया है वो हमें अपने आप से दूसरे को अनुभव कराना। इसलिए रोज बाबा हमें कहते हैं खुद को आत्मा समझो, हम देह से अलग है, मैं आत्मा हूं और मैं इससे अलग हूं। ये बार बार हमें अभ्यास करना है। तो देह भान मिटाना और अपने आत्मा स्वरूप को जगाना, प्रत्यक्ष करना, ये हमारी पहली तपस्या है। सिर्फ स्मृति ही रखनी है ना, अटेंशन ही रखना है कि मुझे इस देह के लिए, परिवार के लिए जो कुछ करना है वो करना है, पर मुझे उसमें खोना नहीं है। भाई शरीर को चलाने के लिए रोज खाना तो खाना है, पर मुझे खाने में, भोजन में गुम नहीं हो जाना है, इतना मुझे रस और स्वाद में नहीं चला जाना है कि मुझे अपना आत्मा स्वरूप भूल जाए। बाबा कहते हैं ना, बल खाओ पियो घूमो फिरो पर मुझे याद करो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मुझे उतना ही घूमना है, खाना है, पीना है, फिरना है और इस रीति से मुझे घूमना, फिरना, खाना, पीना है जो मुझे बाबा याद रहे, बाबा भूले नहीं। तो ये हर एक अपने आप में अटेंशन रखना है कि मैं कहां खो जाती, स्वाद में खो जाती हूं, तेरे मेरे करने में खो जाती हूं, मैं कोई बातें देखने के रस में खो जाती हूं, शरीर को श्रृंगारने में खो जाती हूं, मैं कहां खो जाती हूं, कहां मैं भूल जाती हूं। ये बात ये हरेक को खुद चेक करना है, क्योंकि आप कहां भूल जाते हैं वो तो आपको ही पता है ना। तो हम इतना खुद से डिटैच हो जाएं, बाबा कहते हैं ना, अपने को देह से अलग आत्मा समझो। हम इस दुनिया में पार्ट बजा रहे हैं पर हम इससे अलग हैं। तो इतना अपने आप को हम डिटैच करें कि हमें तुरंत महसूस हो कि मैं यहां खो गई, यहां मैं भूल गई। मैं इस बात में ज्यादा चली गई। और बाबा कहते हैं ना कि तुम खुद सच में तपस्या में होंगे तो आने वाला व्यक्ति भी अपने आप शांति से आपके पास बैठ जाएगा। देखो आप मौन रखते हैं तो अपने आप दूसरा भी धीरे से बोलता है, भाई तुम्हारा तो मौन नहीं है ना, मौन तो मेरा है। पर ये प्रभाव पड़ता है कि जब मैं साइलेंस में रहती हूँ, धीरे से बोलती हूँ, तो दूसरा अपने आप धीरे बोले। इस प्रकार हम इतना याद में रहें कि जो भी हमारे पास आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, उनको खुद ही होगा कि जरूरी बातें ही करनी है बस। कल बाबा ने कहा ना कि मनसा शक्ति क्या है, मन वाणी कर्म की शक्ति आपकी जमा होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो मनसा पावरफुल बनेगी। अब तो केवल तपस्या करने की बात नहीं है, अब समय कौन सा है हमें अपने तप के बल से और आत्माओं को मदद करनी। फिर दूसरी हमारी तपस्या है कि हम बाबा से अलग ना हो। पहला है खुद को भूले नहीं, हमें हर घड़ी अपना स्वरूप याद रहे। और दूसरा है कि मुझे बाबा भूले नहीं, बल बाबा साकार में नहीं, बल बाबा अव्यक्त रूप में भी अब नहीं आ रहे, पर बाबा है तो सही ना, वो है तो सही ना। तो सच्चा प्यार तो यही है ना कि बाबा यहाँ आवे, वतन में रहे, साकार में आवे या आकार में रहे। मेरा प्यार और संबंध तो बाबा से है ही ना, वो कम क्यों होना चाहिए, है ना? वो कम हम क्यों करें कि भी बाबा तो आते नहीं है। बाबा भल नहीं आते हैं पर बाबा है तो सही ना। अच्छा बाबा नहीं आते, हम कईयों को कहते हैं आप आजकल दिखते नहीं थे तो मैं ही आपके पास आ गई कि आखिर कहाँ है क्या है। जाते हो ना आप मिलने कि भी कई दिनों से आपको देखा नहीं, मिले नहीं, सोचा चल ले जाती हूँ, कहाँ है कैसे हैं। बाबा नहीं आते हैं, हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, हम जाए ना बाबा के पास, हम बुद्धि से बाबा के पास जाए तो बाबा भूले नहीं। मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, ये अनुभव हम करें। भक्ति में भी गोपियां गायन करती हैं, निश दिन हर पल क्षण सांझ सकारे, माने ऐसी कोई क्षण नहीं है जो मैं तुमको याद ना करती। भक्ति में मीरा की गायन है, हमने अपने बाबा मम्मा दादियों को देखे तो ये प्यार प्यार। बाबा के लिए कहते हैं ना कि बाबा हंसते हंसते नारायण बन गए, ब्रह्मा बाबा सहज सहज संपूर्ण बन गए। कभी किसी ने बाबा को कोई हट दमन करते, मेहनत करते नहीं देखा, लगन इतनी थी कि सहज सहज बाबा संपूर्ण बन गए। दादियां कहती हमारे देखते देखते बाबा नारायण बन गए, क्योंकि क्यों सहज हुआ ब्रह्मा बाबा को बताइए, जिगरी स्वीकार कर लिया कि बस अब मैं भगवान का, निश्चय लगन ठीक है, सब कुछ है, कर भी रहे हैं, पर मेरे लिए मुख्य बाबा है। बाबा ने इतना जिगरी स्वीकार कर लिया कि बाबा सहज सहज बन गया। और जब दादियों से हम पूछते हैं कि दादियां आप कैसे बाबा समान बन गए, तो दादियां कहती हम तो बाबा के प्यार प्यार में बन गए। कहते हमें कोई बहुत ज्यादा मंथन चिंतन मनन करना नहीं पड़ा, हम तो बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते गए। हमें और कोई इच्छाएं नहीं हुई, प्यार इतना बाबा कहे ऐसे करना। अब आप खुद के लिए सोच लो कौन सी विधि से बनेंगे। हम अपना सोच लेना कि हम किस विधि से बनेंगे। सब विधि मिलाकर भी मुझे बनना है, ये लगन हम लगा ले। हमें भी मुश्किल नहीं लगता है, घर बैठे भगवान मिला है। हम सबको भी बाबा से प्यार है, बाबा के ज्ञान को भी बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से हम सबने समझा है ना? तो हम बुद्धि से भी बाबा से कन्विंस है। जिसके लिए प्यार होता है हर बात में, वो व्यक्ति पहले किसको याद करेगा, उसको याद करेगा। ये चीज सब खा रहे हैं उनके लिए भी रखना, हर बात में आएगा उसको भूलेंगे नहीं। वो हाजिर है या नहीं है, पर उनका हर बात में महत्व रखेंगे, हिस्सा रखेंगे। तो हम भी भले इस दुनिया में बैठे हैं, हमारा बाबा वतन में बैठा है, पर हम क्यों भूलेंगे बाबा को। हम भी ये लक्ष्य रखेंगे कि हमको भी भूलना नहीं, कुछ भी है हर बात में पहले बाबा। तो मुझे उनसे जुड़े रहना है, ये है तपस्या। यहाँ और कौन सी मेहनत है बताइए। सत्य तो मिल गया ना, भगवान खुद मिल गया, और उसके ज्ञान की शक्ति से हम कमल आसन तो बन गए। आज के वरदान में था ना, तुम ब्राह्मणों का आसन कौन सा है, कमल आसन धारी है हम, तो हम कमल आसन धारी तो है ही है। तो कमल पवित्र जीवन किस लिए बनाया, योगी बनने के लिए। मुझे पवित्र बनकर बुद्धि से भटकना थोड़ी है, अब मुझे अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। हम पवित्र बने हैं योगी बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए। इसलिए खुद ही ये अपने पर अटेंशन कि मैं बाबा से डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात बाबा कहते हैं कौन सी तपस्या करनी, कि आप बुद्धि से ऊपर रहो। जिंदगी के इतने वर्ष मन और बुद्धि से हम इस दुनिया में ही तो घूमते रहे हैं। देखो बुद्धि से आप कहां रहते, बुद्धि से हम इस दुनिया की बातों को सोचते रहते, कारोबार को सोचते रहते, मन बुद्धि से यहां ही तो घूमते रहते। अब बाबा ने तो हमें फाइनल प्रोग्राम बता दिया है ना, पता है ना सबको फाइनल प्रोग्राम हम सबका क्या है, हाँ तो मिल गया है ना प्रोग्राम। आप पूछते हैं ना दीदी हमारा क्या प्रोग्राम है, रोज उठ के हम पूछते हैं दीदी आज हमारा क्या प्रोग्राम है। परसों आपके जाने का होगा, आप पूछेंगे दीदी बताइए जाने का प्रोग्राम क्या है। तो बाबा ने हम सबको फाइनल प्रोग्राम कौन सा दिया है, याद है ना सबको, कि भाई वापस घर जाना है और नई दुनिया में आना है। दोनों प्रोग्राम याद है ना, कि हमें वापस घर जाना है और नई दुनिया में आना है। बाबा ने ये प्रोग्राम हमें दे दिया है। अब जब जाना है तो उस दिन आपका बुद्धियों कहाँ लग जाएगा, मधुबन से निकलकर जहाँ जाना है उसी के लिए, कौन सी ट्रेन में जाना है, कितने बजे जाना है, मेरा सीट नंबर कौन सा है और कौन कौन है, सारी बातें पूछते हो ना, तैयारी भी करते हैं ना क्या ले जाना है। तो बस अब हमें क्या सोचना है कि वापस घर जाना है तो किसके साथ जाना है। पता है ना सबको, दुनिया वाले तो बेचारे डरते हैं कि अकेले जाना है, इसलिए तो डरते रहते, मरने से डरते क्यों है, क्योंकि अकेले जाना है, भय लगता है इनको। पर हमारे लिए कोई भय नहीं है क्योंकि हम तो बाबा के साथ जाने वाले। अकेले आए अकेले जाना ऐसे नहीं सोचना है, क्या सोचना है, बाबा के साथ जाना है। तो उस प्यार सुख की अनुभूति के साथ जाएंगे। अकेले जाना है तो बड़ा मन भारी हो जाता है क्योंकि डर लगता है ना, आत्मा को कोई साथ चाहिए। तो बाबा ने कहा मैं आपके साथ हूं ना, बाबा के साथ जाना है। तो अब हमें परम धाम याद आना चाहिए, बाबा याद आना चाहिए, जहां जाना है वहां जाकर क्या करना है, आत्मा को साइलेंस में बैठना है। परम धाम में कौन सा प्रोग्राम है साइलेंस में बैठने का है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना यहां से। वे किसी के घर आप जाते हैं, वो क्या होता है श्रद्धांजलि प्रोग्राम में जाते हैं तो पता है ना भाई वहां जाके चुप बैठना है, प्रार्थना करनी है, जैसा प्रोग्राम ऐसी तैयारी करते हैं ना। तो हमें भी परम धाम में जाना है, आत्मा को अपनी ओरिजिनल स्टेज में जाकर बैठना है। तो रोज याद करना है, दादी रतन मोहिनी रोज पक्का कराती है हम लोगों को कि मैं शुद्ध, वो ही शुद्ध सत्यात्मा सर्वशक्तिमान की संतान। दादी रोज पक्का कराती है कि अपना ये ओरिजिनल स्वरूप याद रखो, क्योंकि मुझे उसी स्वरूप में जाके वहां स्थित होना है। तो जितना हो सके बुद्धि से इस दुनिया में इधर उधर भटकना नहीं है, अब तन से भी नहीं भटकना है और मन से भी नहीं भटकना है, ठिकाना तो मिल गया है ना, फिर क्यों भटकना है। तो घर याद रहे, ऊपर बुद्धि रहे। जिसको ज्ञान नहीं है वो तो इसी दुनिया की बातों को याद करते रहते हैं, हमारे को ज्ञान है असली घर का, वो याद रखना है। और नई दुनिया में आना है तो वो तो अभी तैयारी करनी है ना, जानते हो ना नई दुनिया में हमारी स्टेज कौन सी, नई दुनिया की सारी बातें पता है ना, देवताओं की महिमा कौन सी है? हाँ, तो वो हमें अपने में लाना होगा ना, वो हमें बनना है। ये एक सिंपल देवता की महिमा है। लक्ष्मी नारायण की तो अलग, बहुत परफेक्ट की महिमा, पर एक देवता भी वहां ऐसा होगा। और बाबा कहते हैं ना, एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक धर्म, तो वो सारी चीजें मुझे अपने आप में धारण करनी है ना। अभी यहां वो धारणा करके दिखाना। बाबा कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न यहां बनना है, सतयुग में जाके नहीं बनना है। जो अभी बनेगा वो सतयुग में जाएगा। तो ये एक अंदर अंदर हमारी तैयारी कि मुझे ऐसा बनना है। तो अब बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को क्या चाहते हैं कि हम ऐसी लगन में लग जाएं, ऐसे मगन हो जाएं कि हमारा योगी स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। हाँ, लोग जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत ज्ञान वाले हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत नियम इनके होते हैं, पर अब लोग क्या अनुभव करें? ये योगी आत्मा है, तपस्वी आत्मा है। ठीक है, ओम शांति।